नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, प्रोजेक्ट सोल कैचर, सीक्रेट्स ऑफ साइबर एंड साइबरनेटिक वॉरफेयर रिवील्ड, वॉल्यूम 2, रॉबर्ट डंकन की 2000 में प्रकाशित गैर कथा पुस्तक है। यह साइबरनेटिक्स, न्यूरोसाइकोलॉजी, पूछताछ और कथित मन नियंत्रण के मिलन बिंदु पर लिखी गई एक विवादास्पद पड़ताल है। पुस्तक का केंद्रीय दावा है कि राज्य संस्थाओं ने मानव व्यवहार, संचार और चेतना को प्रभावित करने योग्य प्रणालियों के रूप में समझने तथा इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित कर ली है। डंकन कंप्यूटर हैकिंग और मन में हस्तक्षेप के बीच सादृश्य बनाते हुए इसे बायो कम्युनिकेशन वॉर कहते हैं। पुस्तक में CIA, रक्षा परियोजनाओं और गुप्त तकनीकों से जुड़े गंभीर आरोप रखे गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र, सहज रूप से उपलब्ध पुष्टि सीमित है, इसलिए इसे स्थापित तथ्य के बजाय लेखक के तर्कों, आशंकाओं और साक्षात्कार आधारित दावों के रूप में पढ़ना आवश्यक है। इसका उद्देश्य पारंपरिक साइबर युद्ध की सीमा को व्यक्ति की मानसिक स्वायत्तता और मानवाधिकारों तक विस्तारित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मन को सूचना प्रणाली मानने का केंद्रीय रूपक। पुस्तक की वैचारिक रीढ़ यह रूपक है कि मानव मन को एक अत्यंत जटिल सूचना प्रणाली की तरह देखा जा सकता है। डंकन के अनुसार, जैसे कंप्यूटर में इनपुट, प्रसंस्करण, स्मृति, प्रतिपुष्टि और आउटपुट होते हैं, वैसे ही व्यक्ति की इंद्रियां, स्मृतियां, भावनाएं, भाषिक संकेत और व्यवहार मिलकर एक गतिशील तंत्र बनाते हैं। यह तुलना पुस्तक को तकनीकी शब्दावली और मनोवैज्ञानिक अनुभव के बीच पुल बनाने में सहायता देती है। लेखक का व्यापक आशय यह है कि यदि व्यवहार को संकेतों और प्रतिक्रियाओं के पैटर्न के रूप में समझा जाए तो प्रभाव डालने की कोशिशें अधिक लक्षित हो सकती हैं। हालांकि यह रूपक अपनी सीमा भी रखता है। मनुष्य केवल गणनात्मक मशीन नहीं है, क्योंकि सामाजिक संबंध, शरीर, संस्कृति, नैतिक निर्णय और व्यक्तिगत अर्थ अनुभव को आकार देते हैं। इसलिए रूपक को विश्लेषण के उपकरण की तरह लेना उचित है, न कि मानव चेतना का पूर्ण वैज्ञानिक मॉडल मानना। पुस्तक की शक्ति इसी सरल, याद रहने वाली तुलना में है, जबकि इसकी कमजोरी यह जोखिम है कि जटिल मानसिक प्रक्रियाओं को जरूरत से ज्यादा यांत्रिक बना दिया जाए। पाठक के लिए उपयोगी प्रश्न यह बनता है कि डिजिटल प्रणालियों की भाषा हमारे मनुष्य होने की समझ को किस हद तक स्पष्ट करती है और किस हद तक विकृत करती है। दूसरा, बायो कम्युनिकेशन वॉर और युद्ध की विस्तृत परिभाषा। डंकन बायो कम्युनिकेशन वॉर शब्द के माध्यम से युद्ध को केवल भूभाग, हथियार या कंप्यूटर नेटवर्क की प्रतिस्पर्धा नहीं मानते। उनकी दृष्टि में संचार स्वयं संघर्ष का क्षेत्र बन सकता है, विशेषकर तब जब संदेश, भय, सुझाव, निगरानी या व्यवहार संबंधी जानकारी किसी व्यक्ति की निर्णय क्षमता को प्रभावित करे। पुस्तक के प्रचार विवरणों में कंप्यूटर हैकिंग और व्यक्ति के मन को हैक करने के बीच समानता का दावा किया गया है। इस विचार का विश्लेषणात्मक महत्व यह है कि यह सूचना युद्ध के मानवीय परिणामों पर ध्यान खींचता है। वास्तविक दुनिया में प्रचार, मनोवैज्ञानिक अभियान, डेटा आधारित प्रोफाइलिंग और ऑनलाइन हेरफेर जैसी चीजें व्यवहार पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन इन स्वीकार्य प्रभाव तकनीकों और पुस्तक में वर्णित व्यापक गुप्त मानसिक नियंत्रण की धारणाओं के बीच साक्ष्य का बड़ा अंतर है। पुस्तक उस अंतर को पर्याप्त कठोरता से अलग नहीं करती। फिर भी इसका प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या किसी व्यक्ति के ध्यान, भावनाओं और विकल्पों पर व्यवस्थित प्रभाव को सुरक्षा, कानून और नैतिकता की भाषा में गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस तरह पुस्तक एक तकनीकी विवरण से अधिक संचार शक्ति की सीमाओं पर बहस का दस्तावेज बनती है। तीसरा, CIA और न्यूरोसाइकोलॉजी के हथियारीकरण संबंधी आरोप। वॉल्यूम 2 के विवरण में CIA की पूछताछ पद्धतियों और साइबरनेटिक मन नियंत्रण के माध्यम से न्यूरोसाइकोलॉजी को हथियार बनाने का आरोप प्रमुखता से आता है। डंकन इस विषय को संस्थागत शक्ति के संदर्भ में रखते हैं, जहां मनोविज्ञान का ज्ञान उपचार या समझ के बजाय नियंत्रण, पूछताछ और रणनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह चिंता ऐतिहासिक रूप से निरर्थक नहीं है, क्योंकि राज्य प्रायोजित अनैतिक मानव प्रयोगों और कठोर पूछताछ पर सार्वजनिक बहस का इतिहास मौजूद है। फिर भी किसी ऐतिहासिक दुरुपयोग का अस्तित्व हर विशिष्ट आधुनिक दावे को सिद्ध नहीं करता। पुस्तक के बारे में उपलब्ध सामग्री बताती है कि लेखक साक्षात्कारों और अपने अनुभव संबंधी दावों पर निर्भर करते हैं, पर इन निष्कर्षों की स्वतंत्र सत्यापन क्षमता स्पष्ट नहीं है। अतः पाठक को आरोप, प्रमाण, व्याख्या और अनुमान के बीच अंतर बनाए रखना चाहिए। इस खंड की बौद्धिक उपयोगिता एक आवश्यक नैतिक प्रश्न में है, न्यूरोसाइकोलॉजी और सुरक्षा संस्थाओं के संबंधों पर पारदर्शिता, सूचित सहमति और स्वतंत्र निगरानी कितनी जरूरी है, पर इसकी सीमित विश्वसनीयता वही है जहां असाधारण तकनीकी दावे असाधारण सार्वजनिक प्रमाण के बिना प्रस्तुत होते हैं। चौथा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, अनैच्छिक प्रयोग और मानवाधिकार पुस्तक का सबसे गंभीर निहितार्थ व्यक्तिगत स्वायत्तता से जुड़ा है। डंकन का दावा है कि वर्णित तकनीकों का लोगों पर उनकी जानकारी या सहमति के बिना परीक्षण अथवा उपयोग हो सकता है। यदि ऐसा किसी प्रमाणित रूप में हो तो यह शारीरिक और मानसिक अखंडता, निष्ठा, गरिमा और सूचित सहमति के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। पुस्तक इसी संभावना को जिनेवा कन्वेंशंस और युद्धकालीन नैतिक सीमाओं से जोड़ती है। इस संबंध को सावधानी से समझना चाहिए, क्योंकि पुस्तक में लगाए गए तकनीकी और संस्थागत आरोप स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं है। फिर भी इसका नैतिक ढांचा उपयोगी है। नई तकनीकों के मूल्यांकन में केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं कि वे काम करती हैं या नहीं, यह भी पूछना होगा कि उनका प्रयोग किसके विरुद्ध, किस अनुमति से, किस कानूनी आधार पर और किस जवाबदेही के साथ हो रहा है। डिजिटल निगरानी, व्यावहारिक डेटा और प्रभाव तकनीकों के वर्तमान युग में यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक है। पुस्तक भयावह निष्कर्ष देती है, लेकिन उसका अधिक टिकाऊ पाठ यह है कि मानव मन को प्रभावित करने वाले किसी भी दावे या उत्पाद के लिए कठोर प्रमाण, स्वतंत्र समीक्षा और अधिकार आधारित सुरक्षा उपाय अनिवार्य होने चाहिए। अंत में साक्षात्कार आधारित दावे, प्रमाण की सीमा और आलोचनात्मक पठन। उपलब्ध विवरणों के अनुसार पुस्तक अपने निष्कर्षों के लिए लगभग 650 साक्षात्कारों का उल्लेख करती है। इतनी बड़ी संख्या पाठक पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन संख्या अपने आप में विश्वसनीयता का निर्णायक प्रमाण नहीं होती। आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रतिभागियों का चयन कैसे हुआ, प्रश्न क्या थे, कथनों का सत्यापन किस तरह किया गया, वैकल्पिक व्याख्याओं को कैसे परखा गया और निष्कर्षों की स्वतंत्र पुनरावृत्ति संभव है या नहीं। इन बिंदुओं पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित दिखती है। समीक्षाओं में भी यह बात उभरती है कि पुस्तक के दावों को आसानी से सत्यापित करने का मार्ग नहीं है, इसलिए इसे अकादमिक अनुसंधान, सरकारी जांच या वैज्ञानिक सहमति के समक्ष नहीं रखा जा सकता। इसके बावजूद पुस्तक को पूरी तरह नजरअंदाज करने के बजाय उसके तर्कों को स्रोत साक्षरता के अभ्यास की तरह पढ़ा जा सकता है। पाठक को दस्तावेजित तथ्य, लेखक का अनुमान, साक्षात्कारकर्ता की धारणा और व्यापक वैचारिक निष्कर्ष अलग अलग चिन्हित करने चाहिए। यही पद्धति षड्यंत्र संबंधी साहित्य, सुरक्षा संबंधी दावों और तकनीकी भय के अध्ययन में संतुलन देती है। पुस्तक की चुनौतीपूर्ण प्रकृति इसका आकर्षण भी है और इसकी सबसे बड़ी परीक्षण कसौटी भी। निष्कर्ष में, प्रोजेक्ट सोल कैचर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जिन्हें साइबरनेटिक्स, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, राज्य शक्ति और तकनीक की नैतिक सीमाओं के बीच संबंधों में रुचि है। इसे विशेष रूप से उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो विवादास्पद सुरक्षा दावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहते हैं, न कि पहले से तय निष्कर्षों की पुष्टि। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ किसी प्रमाणित मन नियंत्रण तकनीक का मार्गदर्शन देना नहीं है। इसका उपयोगी योगदान यह है कि यह पाठक को मानसिक स्वायत्तता, निजता, सूचित सहमति और संस्थागत जवाबदेही के प्रश्नों पर विचार करने के लिए उकसाती है। यह सामान्य साइबर सुरक्षा पुस्तकों से अलग है, क्योंकि इसका ध्यान नेटवर्क, पासवर्ड या मैलवेयर के बजाय कथित रूप से मानव चेतना और व्यवहार को निशाना बनाने वाली शक्ति पर है। यही इसे विशिष्ट बनाता है, पर यही कारण इसे सावधानी से पढ़ने की मांग भी करता है। उपलब्ध विवरणों में गंभीर आरोप है, लेकिन उनके लिए स्वतंत्र रूप से जांचे जा सकने वाले प्रमाण स्पष्ट नहीं है। इसलिए सबसे संतुलित पाठन पद्धति यह होगी कि पुस्तक को एक उकसाने वाले वैचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाए। पाठक इसके रूप को और नैतिक चिंताओं से सीख सकते हैं, जबकि ठोस वैज्ञानिक, कानूनी और ऐतिहासिक निष्कर्षों के लिए स्वतंत्र स्रोतों, समीक्षित शोध और विश्वसनीय दस्तावेजों की जांच आवश्यक रखनी चाहिए। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रॉबर्ट डंकन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।